ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரபிரம்மா பரமேஸ்வர் சப்கே அந்தர் அந்தர்யாமி ரூபசே விராஜமான், उनके ही असीम कृपा से हम लोग उसी तत्व को जानने के लिए, उसी तत्व का जो आनंद है अनुभव करने के लिए, हम लोग ऋग्वेदीय ऐतरीय उपनिषद को लेकर विचार कर रहे थे कि उपनिषद का विचार हम लोग क्यों कर रहे, आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए। दुख का कारण क्या है ये भी हम लोगों ने विचार किया था। हम लोग विचार कर रहे ये उपनिषद का जो मंगल चरण, कल भी कहा दिया था मंगलाचरण इसलिए किया जाता है, आने वाला जो विघ्न है, प्रतिबंधक है, उसको हटाने के लिए। यहां वैदिक मंत्र के द्वारा मंगलाचरण कर रहे हैं। उच्चरण तो कल हुआ था। यह सबसे पहले बता रहे वांग में मनसि प्रतिष्ठितम्। मे का मतलब है मेरी, ये मेरी वाणी है, ये मन में प्रतिष्ठित हो जावे, स्थित हो जावे। अभी यहां बता रहे मेरी वाणी, तो यहां वांग शब्द है, दोनों में प्रयोग होता है, इंद्रिया में भी प्रयोग होता है। इंद्रियों के द्वारा उच्चारण किया हुआ शब्द में भी प्रयोग करते हैं, जैसा लोक में बोलते हैं उसकी वाणी बहुत सुंदर है, उसकी वाणी बहुत मीठी है। अभी देखिए वहां आप बोलते उसकी वाणी बहुत मीठी है, किसको लेके बोलते, शब्द को लेकर, उसको भी अपने वाक कहा दिया। और वो जो शब्द उच्चारण कर रहे जिस इंद्रियों के द्वारा, उसको भी वाक कहा जाता है। ये जो वाग है इंद्रियों में भी प्रयोग होता है, और जिस इंद्रिय के द्वारा उच्चारण किया हुआ शब्द में भी अब वाक शब्द प्रयोग कर। तो वाग इंद्रिय हो गया, ये करण है, कारण हो गया, और उससे उच्चारण होने वाला जो शब्द है वो कार्य हो गया। यहां जो वाग बता रहे इंद्रिय को, ये कर्मेंद्रिय है हमारी। पहले भी एक दिन बताया था हमारे अंदर दो इंद्रिया है, एक बाह्य इंद्रिया, एक आभ्यंतर इंद्रिया अंदर के। तो बाह्य इंद्रियों को भी दो भाग में विभक्त किया है, कर्मेंद्रिया और एक ज्ञानेन्द्रिया। जिन इंद्रियों के द्वारा अलग अलग ज्ञान हो रहे, पांच ही ज्ञान होता है, रूप रस गंध आदि, उनको ज्ञानेन्द्रिय कहा। और जिन इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं उसको कर्मेंद्रिय कहा। जैसा यहां जो वाग है वाणी, उसके द्वारा हम कर्म कर रहे अर्थात शब्द का उच्चारण करते हैं, अब ये जो वागिंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उसकी उत्पत्ति किससे हो गई, इसका कारण कौन है? ये जो वागिंद्रिय है हमारी, अपंचीकृत पंच महाभूत दो प्रकार का होता है, एक पंचीकृत होता है, एक अपंचीकृत होता है। कल ही मैंने संकेत दिया था, जो शुद्ध चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य है, माया के साथ संबंध होते हुए उसका नाम पड़ा था ईश्वर, कल ही बता दिया था। वहां के माया के साथ संबंध होने के बाद उन्होंने एक क्षण किया, एक क्षण का मतलब विचार, क्या विचार किया? मैं सृष्टि करूं, क्यों किया विचार ईश्वर ने? क्या जरूरत था उनके लिए? वो यदि सृष्टि ना किया हो तो हम अभी दुखी होते नहीं थे, बहुत खराब किया ईश्वर ने, दुनिया को क्यों बना दिया उन्होंने, उसको कोई काम नहीं था हम लोगों को परेशान करने के लिए। हम ईश्वर के ऊपर डालते हैं, किंतु ईश्वर को हम लोगों ने मजबूरी करवा दिया। जैसा कोई बच्चा है अपने माता और पिता को मजबूरी करवाता मुझे चाहिए करके, पिता की इच्छा नहीं रहती है, माता की इच्छा भी नहीं है, किंतु मजबूरी होके उसको देना ही पड़ता है कभी कभी, वैसा ही जगत पिता ईश्वर को हम लोगों ने मजबूरी करवा दिया। क्यों? जन्म जन्मांतर में हमारा जो कर्म पड़ा है, पूर्व जन्म में उससे पुण्य भी है पाप है, उसका फल तो देना ही ईश्वर को, तो इसलिए प्राणियों का कर्म को निमित्त बनाकर वो सृष्टि करता है। सृजमानः प्राणिकर्मः, हम लोगों का जो कर्म है अदृष्ट है, उसको अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट का मतलब पुण्य और पाप। तो इसलिए जो हम लोगों के कर्म के कारण उसको सृष्टि करना पड़ा, यदि सृष्टि नहीं करें तो भोग कहां से करेंगे? तो इसलिए हमने जमा किया, उसका भोगने के लिए उसको सृष्टि करना पड़ा ईश्वर, तभी वो संकल्प भी करता है। तो उन्होंने संकल्प किया माया के साथ संबंध होने के बाद, उससे पहले नहीं, उसके बाद उन्होंने अपंचीकृत पंच महाभूतों को बना दिया। पहले आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांच बनाने के बाद उसके साथ संबंध हो गया, कल बताया था हिरण्यगर्भ। जैसा आकाश उत्पन्न हुआ ईश्वर ने किया, किंतु वहां भी दो कारण हैं, उपादान कारण, एक निमित्त कारण होता है। सारे वस्तु को हम भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, विचार तो नहीं करते, वहां भी देखे कितना कारण चाह रहे, रोटी अपने अपने ही बनती है, रोटी बनाने वाले हैं उनको पता है क्या क्या चाहिए करके, आटा चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद चूल्हा चाहिए, चिमटा चाहिए, गैस चाहिए, तवा भी चाहिए, ये सब होने पर भी बनाने वाला अथवा बनाने वाले ना हो तो नहीं चलेगा, ये सब कारण है। और रोटी आपने बना दिया, उस रोटी के साथ इनमें कौन सा कारण रहेगा? केवल आटा रहेगा, बाकी कारण रोटी के साथ नहीं रह सकता है। तो इसलिए उपादान, उपा मतलब कार्य के समीप में ही रहता है, वो कार्य को छोड़ के नहीं रहता है, इसलिए उसको कहते उपादान। रोटी बनाने के बाद वो आटा रोटी के साथ ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। मिट्टी से घड़ा बनाने के बाद वो मिट्टी घड़े के साथ ही रहेगी, उपा समीप में रहेगी, अलग नहीं रहेगी, इसलिए उपादान का। बाकी जो बचे हुए कारण देखे, उसमें चूल्हा है, चिमटा है, गैस है बनाने वाले, ये सब निमित्त है। निमित्त का मतलब कार्य बनने के बाद उस कार्य से अलग रहता है। जैसा कुलाल ने घड़ा बना दिया, वो घड़े से अलग रहता है। रोटी किसने बना दिया, उस रोटी से वो अलग रहता है, आटा अलग नहीं रहता है, इसलिए आटा हो गया उपादान, समीप में रहा। अभी निमित्त में देखे, आप दो भाग में देख सकते हैं, वहां भी चूल्हा, चिमटा, गैस, ये सब क्या है, जड़ है, बनाने वाला चेतन है, इसलिए उसको कर्ता कह दिया। निमित्त कारण में जो चेतन है उसको कर्ता कहा दिया, और बाकी सब साधन कोटि में गए। जड़ है वो साधन कोटि में गए, और निमित्त होने पर भी जो चेतन कर्ता कोटि में गया। इसी प्रकार ईश्वर जगत का कारण है, और ईश्वर जगत का कारण है वह दो अंश है। ईश्वर कहने पर आपके सामने दो अंश आएगा, शुद्ध चैतन्य बोल तो एक ही रहेगा, वहां दो नहीं, बस इतना अंतर है। ईश्वर कहने से एक जड़ अंश आ गया, एक चेतन अंश है। जड़ अंश है माया, चेतन अंश है उस माया के साथ संबंध होकर जिसका नाम बड़ा ईश्वर। अभी जो ईश्वर का जो स्वरूप है उसमें चेतन भी कारण हो रहे, जड़ भी कारण हो रहे। तो जड़ है दोबारा बता रहे माया। तो ईश्वर का जो जड़ अंश माया है, जब भी कारण बन रहे तभी हम उसको उपादान कहते हैं। और ईश्वर में जो चेतन अंश है तभी हम उसको बोलते हैं निमित्त कारण बता दिया। जैसा मकड़ी है पूर्ण नाभि, उस मकड़ी में भी दो अंश है, एक चेतन अंश एक जड़ अंश। जो जड़ अंश है शरीर से निकल रहे जाला, तभी मकड़ी शरीर को लेके उपादान हो गया, और मकड़ी के अंदर जो चेतन है उसको लेकर वो निमित्त भी हो गया। वैसे ही जो ईश्वर है वो जड़ अंश माया को लेकर सारा जगत को बना रहे, तभी उपादान कहा दिया, और चेतन अंश को लेकर उसको निमित्त कहा गया। इसलिए कहते अभिन्न निमित्त उपादान कारण। उपादान भी वही है, निमित्त भी है, किंतु अंतर है। दोबारा बता रहा हूं, ईश्वर के साथ संबंध माया है, उसको लेके उपादान हो रहे हो, और उसमें जो चेतन अंश है जिसमें हम ईश्वर, उसको लेके निमित्त है। अन्यथा उपादान यदि हो तो ईश्वर परिणत नहीं हो रहे। तो इसलिए जो ईश्वर ने माया के द्वारा अपंचीकृत पंचभूतों को बना दिया, तो माया में जो तीन गुण तो है ही है, कारण है, जगत का उपादान कारण है माया, तो कारण में यदि गुण है तो कार्य में तो आना ही है, ये नियम है। कार्य का गुण कारण में नहीं आ सकता है। जैसा मिट्टी से आपने घड़ा बना दिया, मिट्टी का जो धर्म है मृत्तिकत्व, मिट्टी में रहने वाला धर्म है मृत्तिकत्व, वो घट में आ गया। घट बनाने के बाद उसमें घटत्व जो धर्म आया ये मिट्टी में नहीं रहेगा, वो कार्य का धर्म है। तो कारण का धर्म कार्य में आ सकता है, कार्य का धर्म कारण में नहीं आ सकता। तो इसलिए अपंचीकृत पंचभूत उत्पन्न हो गए, ईश्वर ने तो किया, वो केवल निमित्त है, उपादान हो गया माया। ईश्वर का जो जड़ंश है वो बन गया, उसमें तीन गुण है, इन तीन गुणों का अलग अलग कार्य होता है। वो जो अपंचीकृत जो पंचभूत उत्पन्न हुआ उसमें सबसे पहले आकाश है, तो आकाश में भी तीन गुण रहेंगे, क्योंकि आकाश का कारण है त्रिगुणात्मक माया है। तो आकाश में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। उसमें जो रजोगुण है आकाश में, कौन सा? अपंचीकृत आकाश में है, ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ जो आकाश है उसमें जो रजोगुण है उसके द्वारा हमारी वागेंद्रिय उत्पन्न हो गई। तो अपंचीकृत आकाश के रजोगुण से ये हमारे वागेंद्रिय उत्पन्न हो गए। उसी प्रकार अपंचीकृत जो वायु है उससे हमारा हाथ बना है, किंतु रजोगुण है। अपंचीकृत जो तेज है उसके रजोगुण से हमारा पैर बना है, और अपंचीकृत जो जल है उसका रजोगुण से हमारी उपस्थेन्द्रिय बनी है, और अपंचीकृत जो पृथ्वी है उसमें रहने वाला रजोगुण से हमारे गुदेन्द्रिया बना। इसलिए पांचों के द्वारा ये पांच इंद्रिया बने, कर्मेन्द्रिया, वाक पाणी पादः उपस्थः पायु। तो यहां जो वाक बता रहे हैं ये इंद्रिया लेना, उस इंद्रिय से उच्चारण किया हुआ शब्द नहीं लेना, दोनों में भी वाक प्रयोग होता। अभी मैंने बताया उसकी वाणी बहुत सुंदर है, उसकी वाणी में मिठास है, वहां जो वाक प्रयोग कर रहे शब्द को, यहां श्रुति में जो बता रहे वाग इंद्रिय को, वाग इंद्रिया, ये जो वाग इंद्रिया में मनसी प्रतिष्ठितम प्रार्थना कर रहे, ये जो मेरे वाग इंद्रिया मन में स्थित हो जावे। वाग इंद्रिया मन में स्थित होना क्या? आगे बता रहे मेरा मन वाग इंद्रिया में स्थित हो, इसका तात्पर्य यह है जैसा हम मन के द्वारा सोच रहे, जैसा हम मन के द्वारा विचार कर रहे वैसा ही वाग इंद्रिया बोले। नहीं तो कभी कभी होता है हम सोच रहे कुछ, अंदर रखा है कुछ, सामने दिखाने के लिए बात कर रहे कुछ, ऐसा नहीं। ऐसा यदि हो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां दोनों में परस्पर बता रहे वाग इंद्रिया मन में स्थित हो जावे, मन वाग इंद्रिय में स्थित हो जाए। पहले भी मैंने कहा दिया था हमारे दो इंद्रिया प्रबल है, कर्मेंद्रिय में वागिंद्रिय है और मन है। कारण है भूत, वर्तमान, भविष्य को विषय करता है। पहले एक दिन बताया था, बाकी कोई इंद्रिया है नहीं, ये वर्तमान को छोड़ के विषय नहीं करती। आंख भी वर्तमान को ही देख सकता, कान भी वर्तमान शब्द को ही सुन सकता, सारे इंद्रिया मन और वाणी को छोड़ करके, पहले दिन बताया था मैं। इसलिए यहां बता रहे वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, इसलिए शास्त्र में कहा दिया है मनश्चेकम वचश्चेकम कर्मण्येकम महात्मना। जब तक आपको महात्मा आप नहीं बनेंगे तब तक उस महान तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। तो महात्मा का मतलब वह स्पष्ट बता दिया, मनश्चेकम वचश्चेकम कर्मण्येकम, वही महात्मा है। केवल वस्त्र धारण किया वो भी एक निमित्त है, इतने मात्र से नहीं होगा। जैसा आप मन में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वैसे ही वाणी के द्वारा बोलना चाहिए। और वाणी के द्वारा आप जैसा बोलते हैं वैसा आचरण भी करना चाहिए। आप बोल रहे कुछ बढ़िया बढ़िया, आचरण दिन किसके लिए बोल रहे? दूसरे के लिए। अरे दूसरे के लिए बाद में, पहले अपने को सुधारो। स्वयं को यदि नहीं सुधारेंगे तो आप दूसरे को क्या सुधारेंगे? तो इसलिए वहां मन वाणी और कर्तव्य तीन एक हो, इसलिए यहां दो का संकेत किया। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाची। हम शब्द बोलते हैं, विचार नहीं करते, ये शब्द कैसा निकलता है मुंह से? ये प्राणी है, शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? व्याकरण में कहा दिया है वह महाभाष्यकार ने, ये जो हमारा प्राण है नाभि से ऊपर आता है, इसलिए प्राण का एक नाम है बृहस्पति भी कहा दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद में बृहस्पति का मतलब वो जो नहीं, इंद्रों का गुरु नहीं है, बृहति कहते हैं वाणी का नाम। ये जो वाणी है उसका नाम है बृहति, और उसका पति का मतलब उसका उत्पत्ति का कारण, स्थिति का कारण। पति का तात्पर्य है जिससे उत्पन्न हो रहे, जिसमें स्थित है वो पति है। पाति रक्षति इति पति, अर्थात जो रक्षा करता है। तो इसलिए प्राण के द्वारा ही हमारी वाणी उत्पन्न होती। बृहति का मतलब वाणी, उसका जो पति प्राण है। तो कैसा उत्पन्न होता है? जो हमारे नाभि से प्राण ऊपर आता है, धीरे धीरे ऊपर आकर हमारे मुख में आठ स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धादि। शब्द हम उच्चारण करते हैं व्याकरण में, इचु रसना तालु, ऋटु रसना मूर्धा। ये जो प्राण आके उसी स्थान में टक्कर मारता है, संयोग होता है। संयोग भी दो प्रकार का माना है, एक नहीं, एक तो अभिघात संयोग कहते हैं और दूसरा एक नोदन संयोग कहते हैं। अभिघात संयोग को उसको कहते हैं शब्द जनकत्वम, दोनों का संयोग होते समय जो शब्द उत्पन्न होता है। जैसा आप नगाड़ा बजाते हैं तो वहां दो का संयोग होगा, एक लकड़ी और नगाड़े का। तो लकड़ी और नगाड़े का जो संयोग हो गया वो अभिघात है, धीरे से आप लकड़ी रखने से वहां शब्द निकलेगा नहीं। जिस संयोग से शब्द उत्पन्न होता है उसको बोलते अभिघात संयोग, और दूसरा एक संयोग होता है उसका नाम है नोदन संयोग। जैसा टेबल के ऊपर आपने रुई डाल दिया, टेबल का और उस रुई का संयोग तो हो गया किंतु शब्द उत्पन्न नहीं हुआ।